संपूर्ण लोगों को उन्होंने अपने में लीन कर रखा है और विभिन्न मार्गों से उनकी स्तुतियां हो रही है। वे बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट में सब जीवों का दुख है वो हर लिया गया है, उनके होठों पर लालिमा है और वो लालिमा बहुत ही सुंदर है, नाक बड़ी सुंदर है, कदम्ब किंजल के पिशंग वाससा, और उनके वस्त्र है वो बहुत सुंदर है, श्वेत वस्त्र है, कुछ पीलेपन को धारण किए हुए है, दिव्याति दिव्य उनका हार है, श्री वत्स का चिन्ह है वक्षस्थल पर, और उनके मुकुटों में बहुमूल्यवान मणियां बहुत दूर तक चमक रही है। ऐसा भगवान का वो दिव्य रूप देखा और दिव्य रूप देख करके वो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये सब भगवान के सामने प्रकाशित हो रहे हैं, सुदर्शन आदि मूर्तिमान होकर के उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। तब उन्होंने सृष्टि में से और कुछ नहीं देखा, जल देखा, वायु देखा और आकाश देखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा था। अब वे भगवान के उस दिव्य रूप को देख करके बड़े प्रेम से श्रद्धा से ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे कि ओहो महाराज, सामान्य प्राणियों को आपका ये दिव्य रूप दिखाई नहीं देता है, वो आज आपने हमको बड़ा ही विचित्र माया से परे रूप है वो हमको दिखाया है। ये ऐसा रूप सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए आप दिखाते हैं, मुझे भी आपने बनाया है, कारण कि मेरे बनने के बाद ही सब जीवों की उत्पत्ति होगी। आपके इस निर्विकार स्वरूप के अतिरिक्त मुझे संसार में और कुछ भी नहीं चाहिए। हे भुवन मंगल, जिन्होंने आपका ध्यान नहीं किया है और जो आपके भजन से विमुख है, उन्होंने अपने नरकों की तैयारी की है, और जो आपके चरण कमलों को अपने कानों से सूंघते हैं, कैसी विचित्र बात है, कान से कभी सूंघा जाता है, परंतु कहते हैं जिग्रंथि कर्ण विवरई श्रुति वात अनीतम, हाँ हाँ कानों से आपके चरण कमलों का गंध सूंघा जाता है, अर्थात जो आपकी कथाओं को सुनने वाले हैं और जिन्होंने भक्ति से आपके चरणों को पकड़ लिया है, हे नाथ फिर आप उसको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ये जो घर गृहस्थ में रहते हुए कभी कभी चिंताएं होती है, शोक होता है और कभी लोभ पैदा होता है, कभी ममता पैदा होती है, चाहते हुए भी कभी हम चिंताओं से दूर नहीं हो पाते हैं, इसका कारण क्या है कि वे लोग आपकी चरणों की शरण स्वीकार नहीं करते हैं, यही उनकी चिंताओं का खास कारण है। वे बिचारे लोभाभिभूत वे पाप करते रहते हैं, थोड़ा सा सुख मिलता है उसके लिए बड़ा भयंकर पाप होता है। काम सुख लेश लवाये, लेश माने थोड़ा और लव माने थोड़े में भी बहुत थोड़ा, हमारी इच्छाओं का जो सुख है वो बहुत थोड़ा सा मिलता है, उसके लिए बिचारे अभिभूत वे आपके चरणों से विमुख होकर के तरह तरह का पाप कर लेते हैं, और वे भूख से, प्यास से, काम से, क्रोध की अग्नि से जलते रहते हैं, और इन जीवों को सदा ही आप मिले हुए हैं लेकिन फिर भी वे आपसे अपने को पृथक मानते हैं। ऐसे लोगों का संसार में आवागमन का चक्र है, कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसे लोग दिन में तो व्यर्थ की चेष्टाएं करते रहते हैं और रात में उनको नींद नहीं आती है, थोड़ा सा भी कोई खटका होता है तो एकदम चौंक जाते हैं, क्या हो गया, ऐसे ऐसे मनोरथ बना बना करके लोग जी रहे हैं। महाराज ऐसे लोगों का जो जीवन है वो वास्तव में बड़ा दयनीय है, और आप ऐसे दिव्य हैं महाराज कि आप बड़े बड़े योगियों के हृदय कमल के अंदर विराजमान हैं और आप सब प्राणियों के हृदय के अंदर भी विराजमान हैं, परंतु कोई आपको चाहे तब ना, और आपकी चाहना के लिए, आपकी पूजा के लिए जीव को कोई सामग्री जुटाने की जरूरत नहीं है। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचार ही, आप बहुत बड़ी कोई पूजा की सामग्री हो और बहुत बड़ा कोई पैसा लगावे, बहुत बड़ा कोई साधन इकट्ठा करे तब प्रसन्न होवे, ना ऐसी बात नहीं है। आपको प्रसन्न करने के लिए तो जीवों को एक काम करना चाहिए, वो है सब्र भूत दया, सारे के सारे प्राणियों के ऊपर करुणा करे, किसी भी दुखी आदमी को देखे और उसका मन करुणित हो जाए कि अरे राम इसका दुख दूर कैसे हो, ऐसा जिसका हृदय द्रवित हो जाता है वैसा ऐसा व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी पूजा कर चुका, इसमें संदेह की बात नहीं है। और जिन महापुरुषों ने अपने अज्ञान को पी लिया है, उन्होंने आपके पावन दर्शन किए हैं, क्योंकि आपने भी अपने अज्ञान को पी लिया है। और जो भी कोई व्यक्ति आपके अवतारों की कथाओं को सुनते हैं, आपके लीलाओं को सुनते हैं, आपके कर्मों को देख देख कर सुन सुन करके जो आश्चर्य करते हैं, और प्राण त्याग के समय में जो आपके पावन नाम का कीर्तन करते हैं, उन लोगों का इतने मात्र से न जाने कितने जन्मों का पाप दूर होता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। चाहे मैं हूँ, चाहे शंकर हो, चाहे और कोई भी हो, ये सृष्टि के अंदर जो कुछ हम जगदीश्वर कहलाने वाले, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के जो अपने आप को हम कारण मानने वाले हैं, उन सब में आप ही के द्वारा शक्ति आई है। आप महाराज भुवन द्रुमाय संसार रूपी जो वृक्ष है, वो वृक्ष आप ही है। जैसे बीज ही वृक्ष के रूप में है, ऐसे ही आप ही संसार के रूप में है। हाँ, एक बात है, संसार का जो बीज है वो बीज वृक्ष का जो बीज है वो बीज स्वयं नष्ट होता है और आगे जाकर फल में दूसरे बीज परिणित कर देता है, परंतु आप ऐसे बीज हैं कि सनातन बीज हैं। आपसे पैदा होने वाला जगत नष्ट हो सकता है, आप नष्ट नहीं होते, जबकि और बीज है वो बीज स्वयं नष्ट हो जाता है और उस बीज से पैदा होने वाला वो कायम रहता है। लेकिन आप ऐसे दिव्य बीज हैं, पैदा भी कर देते हैं और अपने और आपकी स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। महाराज, मेरी आयु बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपके इस काल से सदा ही डरता रहता हूँ, जो काल सबके जीवन को छीन रहा है। बड़ा आश्चर्य है कि लोग पाप कर रहे हैं और पुण्य से लोग विरत हो रहे हैं, भूल गए हैं। अरे कितने दिन तक पाप करके सुख पाओगे, ये तो कालाग्नि में बैठा हुआ है। अरे सांप के मुंह में आया हुआ चूहा, सांप के मुंह में आया हुआ चूहा यदि अपने सामने किसी मच्छर को खाता है और तो वो कितनी देर पेट भरेगा, स्वयं सांप के मुख में है। ऐसी हमारी दशा हो रही है। चाहे कितने कहीं किन्हीं शरीरों में चले जाओ, वहां महाराज आपकी गति कहीं पर रुकने वाली नहीं, सबको जानने वाले है। ये जीव पांच प्रकार के क्लेशों के अंदर बंधा हुआ है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा। राग, द्वेष और अभिनिवेश, अविद्या माने अज्ञान, अविद्या अस्मिता माने शरीर को मैं मानना, अविद्या अस्मिता और राग और द्वेष और अभिनिवेश, अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। इन पांच क्लेशों से जीव बिचारा जकड़ा हुआ है और आपके अंदर किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। आपके नाभि कमल से, आपकी कृपा से मैं पैदा हुआ हूँ। सारी जगत, सारे जगत के आप आत्मा हो। अब आप मुझे जैसा आदेश देंगे, यथा हम स्रक्ष्यामि, वैसी मैं सृष्टि की रचना करूंगा। और नाभि ददादि सतोम्बसी अस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रहमा समानंत शक्ते। हे प्रभु, आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि जो ज्ञान मेरा किसी भी प्रकार से लुप्त न होवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया और स्तुति की और उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कहने लगे कि देखो ब्रह्मा जी, आप फिर तपस्या करो। क्या बताऊं, मुझे तपस्या बहुत प्रिय लगती है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग रहती है, इसी प्रकार से सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में मैं रहता हूँ। अब वो लकड़ी के अंदर कोई आग, लकड़ी को कोई चीरेगा तो आग थोड़ी दिखाई देगी, लेकिन लकड़ी का कोई मंथन करेगा तो आग प्रकट होगी। इसी प्रकार से मेरा स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि वो अपने अंदर ही उसका ज्ञान किया जाए तो ज्ञान कर सकते हैं, बाह्य दृष्टियों से ज्ञान नहीं होता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुमने जो स्तोत्र अभी कहा है, इस स्तोत्र का जो भी कोई पाठ करेगा वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। सर्व काम वरेश्वर है, वो अपनी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर लेगा। मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम तपस्या करो और तपस्या करके फिर सृष्टि का निर्माण करो, तुम्हें किसी प्रकार से सृष्टि के निर्माण में कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसा कहने के बाद भगवान अंतरित हो गए। कहते हैं भगवान के अंतरित होने के बाद कैसे सृष्टि बनाए, क्या बताते हैं कि भगवान ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा ने वो जो पद्म था, कमल था, उस कमल के तीन टुकड़े किए, तीन विभाग किए। एक विभाग में एक लोक, दूसरे विभाग में दूसरा लोक, तीसरे विभाग में तीसरा लोक। वो लोक है भूर भुवः स्वः, भूलोक और भूलोक और स्वरलोक, ये तीन लोक बनाए। अब कहते हैं हमने तो 14 लोक सुने हैं, आप ये तीन लोक बता रहे हैं। तो देखो बहुत ठीक बात बता रहे हैं। एतावान जीव लोकस्य संस्था भेद समार्थित धर्मस्य यह निमित्तस्य विपाक है परमेश्वरसौ। यद्यपि उसके 14 विभाग हो सकते थे, लेकिन ये तीन भेद उन लोगों के लिए किए हैं जो संसार में सकाम भाव से कर्म करते हैं अथवा पाप कर्म करते हैं। उन लोगों को कर्मों का फल भोगाने के लिए तीन ही लोक है, भूलोक है, भूवरलोक है और स्वरलोक है। ये नरक वगैरह सब भूलोक के अंदर जो पिंड है उसके अंदर आ जाते हैं। आगे बता दी जाएगी बात पांचवें स्कंद में। तो ये अपने अपने कर्मों का फल जीव भोगता है, वो ये इन्हीं लोकों में भोगता है, तीन लोक में ही। आगे जनलोक, महरलोक, तपोलोक, सत्यलोक है। इन लोकों के अंदर जीव जाते हैं और उनकी मुक्ति होती रहती है। कहते हैं अब सबसे पहले क्या हुआ कि महतत्व का निर्माण हुआ, वो पहली सृष्टि बनी। महतत्व के बाद फिर अहंकार बना तो ये दूसरी सृष्टि हुई। अहंकार भी तीन प्रकार का, सात्विक अहंकार है, राजस अहंकार है और तामस अहंकार है। इस प्रकार से चौथी, पांचवी, छठी सृष्टि हो गई। छठी सृष्टि में पांच प्रकार का अज्ञान पैदा हुआ बताई दिया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये पांच प्रकार के अज्ञान है, ये छठी सृष्टि हुई। सातवें में वृक्ष वगैरह हो गए, आठवें में पशु पक्षी हो गए और नौवें सृष्टि ये मनुष्य की हुई कि जिसमें रजोगुण की अधिकता है, ये कर्म परायण है और दुखे च सुख मानिन, दुख में ही ये सुख मान रहा है। ये ब्रह्मा जी के यहाँ नौवीं सृष्टि है और दसवीं सृष्टि सनत कुमार आदि की है। इस प्रकार से सृष्टि हुई है। इसी के देव सृष्टि के अंतर्गत ही गंधर्व, अप्सर, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, चारण, देवता, भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, किन्नरी सब इसमें आ गए हैं। इस प्रकार से सृष्टि बनी है। अब हम बतावे कि परमाणु से लेकर के आगे तक कैसे सृष्टि। देखो इस सृष्टि के निर्माण में हमारे शास्त्र में तीन मत आते हैं। एक मत आता है परिणाम, एक तो परिणामवाद, एक आरंभवाद और एक विवर्तवाद। आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद तीन प्रकार के वाद हैं। वो कहते हैं प्रकृति से सृष्टि पैदा हुई तो उसके विषय में आरंभ होता है सृष्टि का एक प्रकृति तत्व से, उससे लेकर सृष्टि का बनना आरंभवाद, और छोटे छोटे परमाणु इकट्ठे होकर के बनते हैं वो है परिणामवाद, और या प्रकृति ही कार्य रूप में परिणित होती है वो परिणामवाद, और परमाणुवाद वो आरंभवाद बोल दो, परमाणुवाद बोल दो, और तीसरी है विवर्तवाद, माने है तो सृष्टि और ढंग की दिखाई दे रही है और ढंग की, एक ही परमात्मा है, उस परमात्मा में हम लोगों की भेद दृष्टि ऐसी हो रही है कि सृष्टि और परमात्मा ये दो दिखता है, वास्तव में सृष्टि वह परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से अलग नहीं है। अद्वैतवादियों के मत में ये विवर्तवाद है और दूसरे आचार्यों के मत में सांख्य आदि दूसरे शास्त्र, न्याय आदि वैशेषिक शास्त्र, उनके मत में परमाणुओं से बनती है अथवा प्रकृति के परिणति से बनती है। भागवत के इस तीसरे स्कंद में दोनों ही बात, तीनों ही बातें आ जाती है। माने भागवत को ये पक्षपात नहीं है कि सृष्टि किन किन तत्वों से बनती है, बल्कि भागवत को ये बताना है कि सृष्टि के सभी सिद्धांतों में एक मूल में परमात्मा है, ये बात समझानी है। परमाणु किसे बोलते हैं कि जो कार्य जगत है उसका जो छोटे से छोटा अंश जिसका कोई टुकड़ा न हो सके वो परमाणु कहलाता है। वो परमाणु, दो परमाणु मिलते हैं तब अणु बनता है, तीन अणु मिलते हैं तब त्रिश्रेणु बनता है, त्रिश्रेणु इतना छोटा होता है कि जिस समय में जालदान से प्रकाश आता है छोटे छोटे कण दिखते हैं वो त्रिश्रेणु के रूप में है, और तीन त्रिश्रेणु मिलते हैं तब एक त्रुटि बनती है, और 100 त्रुटि होती है तब वेद बनता है, तीन वेद होता है तब लव बनता है, तीन लव मिलते हैं तब निमेश होता है, और तीन निमेश बनते हैं तब क्षण होते हैं, पांच क्षण होते हैं तब काष्ठा बनती है, और 15 काष्ठा होती है तब लघु बनती है, 15 जब लघु होते हैं तो नाड़िका बनती है, फिर मुहूर्त बनता है, फिर प्रहर बनता है, फिर पक्ष बनता है। माने 15 दिन का पक्ष एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, दो पक्षों का फिर महीना होता है, फिर दो महीनों की एक ऋतु होती है और छह छह महीनों का एक एक अयन होता है और दो अयनों का एक वर्ष होता है। ये हमने आपको वर्ष के जो बात बताई ये संवत्सर शतम नृणाम और एक मनुष्य की 100 वर्ष तक की आयु का ये परिमाण है। इसके अलावा भी ये पृथ्वी का है कालमान, चंद्रमा चंद्रलोक का कालमान अलग है, देवताओं का कालमान अलग है और ब्रह्मलोक का कालमान अलग है। देखो ब्रह्मलोक की तरफ जावे ऊंचे के लोक में जावे इनके सबके कालमान अलग होते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर और कली चार युग होते हैं, इन चारों में एक एक से ज्यादा एक एक से दुगना एक एक युग होता है, माने 1200 दिव्य वर्ष कलयुग के हैं तो 2400 द्वापर के होंगे, 3600 त्रेता के होंगे और 4800 दिव्य वर्ष होंगे वो सतयुग के होंगे। ऐसे 1000 वर्ष में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन के अंदर 14 मनुओं का राज्य होता है, एक एक मनु को 71 से थोड़ी अधिक राज्य करने की वेला मिलती, समय मिलता है। इस प्रकार से एक एक मनवंतर में एक एक मनु को इतना लंबा चौड़ा समय धर्म की रक्षा के लिए मिलता है और जब ये त्रिलोकी जलने लगती है तब ये ब्रह्मलोक से भी प्राय ये महरलोक में चले जाते हैं। भूर्व लोक से प्राणी जनलोक तप लोक में रहने वाले प्राणी फिर आगे महरलोक में चले जाते हैं, ऊंचे के लोक में चले जाते हैं और फिर और ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी भी जब लीन होने लगते हैं तब वे आगे जाकर भगवान में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की भी आयु ऐसे 100 वर्षों की है, तो 50 वर्ष का एक पूर्वार्ध कहलाता है और फिर आगे 50 वर्ष का वो परार्ध कहलाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का पहला ब्राह्म पर पूर्वार्ध का पहला युग ब्राह्म हुआ है और 50वां वर्ष है वो पद्म हुआ है और इस समय में श्वेत वराह कल्प के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ है। तो ऐसा ये काल है, लेकिन ये सारा का सारा काल भगवान के सामने कितना छोटा पड़ता है। वो देखो भगवान आंख खोलते हैं तो ब्रह्मा जी पैदा होते हैं और आंख बंद करते हैं तो ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। जो ब्रह्मा 1000 चतुर्युगी का दिन 1000 चतुर्युगी की रात्रि के कालमान उससे वर्ष बना महीने वर्ष बनावे और वे ब्रह्मा जी पैदा होते हैं भगवान के आंख खोलने से। अब आंख बंद की इसलिए ब्रह्मा भगवान के यहाँ ब्रह्मा जी की कोई कमी नहीं है। एक बार एक ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई हमारा काम तो आने भगवान का काम तो हमारे से ही चलता है, तो थोड़ा घमंड हो गया ब्रह्मा जी को घमंड हो गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान को इस्तीफा लिख दिया कि महाराज हम तो आपका ये सृष्टि बनाने का ये सब काम बंद करते हैं, हमसे नहीं होता है। भगवान ने कहा कि भाई देखो ब्रह्मा जी आप नहीं काम करेंगे तो हमारा तो सारा काम अटक जाएगा। अब ज्यों ज्यों वो ऐसी बात करें तो भगवान ने और उनके अंदर फूंक भर दी कि तुम्हारे से ही काम चलता है, आप काम नहीं करोगे तो ब्रह्मा जी हमारा तो सारा काम रुक जाएगा। महाराज रुको चाहे जो कुछ हो, मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं तो अब आपका काम नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा अरे भाई आप कर दीजिए काम, भैया हम अब महाराज हमसे काम होता नहीं है। भगवान ने खूब खुशामद की, ब्रह्मा जी माने नहीं। भगवान ने कहा अच्छी बात है भाई, अब आप नहीं मानते तो मैं क्या करूं। तो वो ब्रह्मा जी भगवान के वहां से रवाना हुए तो आगे देखा कि बहुत से ब्रह्मा हैं आपस में लड़ रहे हैं, वो क्या मैं आगे आऊंगा। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप लोग मेरी सकल सूरत वाले कौन हो, कि क्यों भाई तो आप लोग इतने इकट्ठे क्यों हो रहे हो। हमने सुना कि एक ब्रह्मा के हृदय में मूर्खता पैदा हुई, वो इस्तीफा दे रहा है, हम सोच रहे वो कब वो जल्दी निकले, कब हम जल्दी ब्रह्मा बने ताकि हम ये देख लेवे कि भगवान का काम रुकने वाला नहीं है। तो वो देखा कि आप सब ब्रह्मा बनने जा रहे हो, कि हाँ हम ब्रह्मा बनने जा रहे हैं। अब देखे तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में ब्रह्मा है। तब वे वापिस लौट आए, भगवान के चरणों में गिर गए, महाराज मेरी खोपड़ी खराब हो गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज, मेरे मन में घमंड पैदा हो गया था, अब महाराज मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। तो लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्य कोटिशो यंड राशय है, भगवान के एक एक रूप में ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा रहते हैं और ये जो सृष्टि है ये 50 करोड़ योजन फैली हुई है। 50 करोड़ योजन माने 2000 करोड़ कोषों में फैली हुई है, 200 करोड़ कोष में फैली हुई है, 200 करोड़ कोष के अंदर ये हमारा ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम राज्य में करोड़ों करोड़ों हैं। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं। तो ये तो हमने आपको काल की बात सुनाई, अब बताते हैं हम आपको सृष्टि की बात कि ब्रह्मा जब सृष्टि बनाए तो सबसे पहले ये पांच अविद्या की गांठें हैं वो पैदा हुई। क्या हुआ कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच पैदा हुए। इससे ब्रह्मा जी का मन खुश नहीं हुआ तो फिर सनत कुमार आदि को बनाया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादि ऋषि हैं। तो इन चारों को बनाया तो कहा कि भाई तुम सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने कहा कि महाराज सृष्टि का विस्तार हमसे नहीं होता, हमको तो मालूम है भगवान का ध्यान और भजन करने में कितना आनंद आता है, हम सृष्टि के चक्र में नहीं पड़ते। तब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। बड़े आदमी को छोटा आदमी जवाब दे देवे तो बड़े आदमी को क्रोध तो आता ही है। और आप देखो क्रोध आते ही मनुष्य का सबसे पहले कौन सा अंग विकृत होता है, ये चेहरा, चेहरे में भी भौवे और भौवे में भी ये जो बीच का भाग है ये ज्यादा घूमता है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध पी गए, बोले तो कुछ नहीं, लेकिन वो दोनों भावों के बीच में वो क्रोध था, वो क्रोध इकट्ठा हो गया, बहुत बुरा लगा। उसी समय में रुद्र पैदा हुआ उनके दोनों भावों के बीच में से। रुद्र पैदा हुआ तो कहा महाराज बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है कि बेटा तुम सृष्टि पैदा करो। कि अच्छी बात है, अब वही क्रोध से जब सृष्टि पैदा होगी तो ऐसी होगी, बड़ी गंदी प्रजा पैदा हुई उस समय में। तब ब्रह्मा जी को बड़ा विचार हुआ कि सब लड़ने झगड़ने वाले हैं, आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं। तो फिर रुद्र को कह दिया कि भाई तुम तो जाओ तपस्या करो और तुम सृष्टि को बंद कर दो। जब रुद्र ने सृष्टि बनानी बंद कर दी तब ब्रह्मा जी स्वयं तपस्या करने के लिए गए और तपस्या करके बहुत शांत हो गए। अपना क्रोध जब उनका शांत हो गया तब भगवत शक्ति युक्तस्य, भगवान की शक्ति प्राप्त करके लोक संतान हेतव, लोगों के विस्तार के लिए उन्होंने अपने में से ऋषियों को बनाया। देखो ये प्रजापति हैं, जैसा संकल्प करेंगे वैसा उनका रूप सामने आ जाएगा। तो मरीचि है, अत्रि है, अंगिरा है, पुलस्त्य है, पुलय है, क्रतु है, भृगु है, विशिष्ट है, दक्ष है और नारद है, ये 10 पैदा हुए। एक एक उनके अंग से, नारद उनके उत्संग से, गोद से पैदा हुए, दक्ष उनके अंगूठे से पैदा हुए, स्वयंभू प्राण से पैदा हुए, स्वयंभू के प्राण से वशिष्ठ जी पैदा हुए, भृगु है उनके त्वचा से पैदा हुए, क्रतु है उनके हाथ से पैदा हुए। इस प्रकार से उनके पैदा हुए अलग अलग शरीरों से, धर्म है उनके स्तन से पैदा हुए, अधर्म है उनकी पीठ से पैदा हुए, उनके हृदय से काम पैदा हुआ, भौवों से क्रोध पैदा हुआ, होठ है उससे लोभ पैदा हुआ, ये सब ब्रह्मा जी से पैदा हुए। छाया से कर्दम जी पैदा हुए जिन्होंने कपिल को जन्म दिया था, उनकी वाणी से सरस्वती पैदा हुई। और जब सरस्वती जी पैदा हुई तो सरस्वती के पीछे ब्रह्मा जाने लगे तो लोगों ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप अपनी पुत्री के पीछे कैसे दौड़ते हैं। तो देखो ये वास्तव में जैसे सुखदेव जी महाराज के पीछे गए वेद व्यास जी तो बेटे के मोह से नहीं गए थे, ऐसे ही सरस्वती के मोह से ब्रह्मा जी नहीं दौड़े हैं। सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है और ब्रह्मा जी कर्म के अधिष्ठात्री देवता है, तो कर्म को ज्ञान के पीछे जाना चाहिए। ज्ञान के पीछे कर्म रहेगा तो वो कर्म शुद्ध होगा, और ज्ञान के पीछे कर्म नहीं चलेगा और मनमाने ढंग से कर्म किया जाएगा तो वो कर्म अच्छा नहीं होगा। लेकिन लोगों ने ब्रह्मा जी के इस तात्पर्य को नहीं समझा तो ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर त्याग दिया, दूसरा शरीर बना लिया। दूसरा शरीर बनाना और एक शरीर का त्याग करना ये क्या है, ब्रह्मा जी के अंदर ऐसे संकल्पों की शक्ति है, ऐसे ऐसा वे कर सकते थे। ता फिर ब्रह्मा जी के चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए, चारों वेदों के चार कर्म हैं, शस्त्र कर्म, इज्जा कर्म, स्तुति स्तोम और प्रायश्चित। शस्त्र कर्म है होता का, इज्जा है आध्वर्यु का और स्तुति स्तोम कर्म है उद्गाता का और प्रायश्चित है ब्रह्मा का। ये चार कर्म पैदा हुए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, ये सब उन्हीं से पैदा हुए। इतिहास पुराण आदि उनके ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए। विद्या, दान, तपस्या, धर्म, ये सब धर्म के चरण है, ये उन्हीं से पैदा हुए। आश्रम भी पैदा हुए, बड़े बड़े संतों के, महापुरुषों के जो लक्षण है वो भी उन्हीं से पैदा हुए। छंद उनसे पैदा हुए, छंद उनके त्वचा से पैदा हुए, त्रिष्णुप उनके मांस से पैदा हुआ, अनुष्णुप उनके हड्डी से पैदा हुए, ऐसे ऐसे छंद उनके यहाँ पैदा हुए, स्वर उनसे पैदा हुए। सृष्टि में यही तो मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, कर्म मिलेगा, द्रव्य मिलेगी, वस्तु मिलेगी, सब कुछ ब्रह्मा जी से पैदा हुए, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ सृष्टि के विस्तार में। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने शरीर का दो विभाग किया मन से, एक को तो स्त्री बनाया और एक को पुरुष बनाया। पुरुष का नाम मनु रख दिया और स्त्री का नाम शत्रुपा रख दिया। और ब्रह्मा जी ने कह दिया, जाओ भाई अब तुम दोनों मिलकर के सृष्टि को बनाओ। तब मनु और शत्रुपा के द्वारा पांच संतान पैदा हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद दो तो पुरुष पैदा हुए, और आकुति, देवहूति और प्रसूति ये तीन उनके पुत्रियां पैदा हुई। आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, उसी सारा संसार भरा पड़ा है। विदुर जी कहने लगे, महाराज ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये स्वयंभू मनु की बात आते ही महाराज हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो गया, जरा स्वयंभू मनु का आप चरित्र सुनाओ, क्योंकि यहाँ पर प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे बड़े श्रेष्ठ राजा हुए हैं, इनके वंश की आप हमको विस्तार से कथा सुनाओ। कहते हैं कि जब मनु का निर्माण हो गया तो मनु ने अपने पिता से कहा कि महाराज हमारा निर्माण आपने किया है, किस उद्देश्य से किया है, हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा, जो बेटा अपने बाप के सामने जाकर कहता है कि हे पिताजी आपकी क्या आज्ञा है, आपके मन के अनुरूप ही मैं करना चाहता हूँ, उस बेटे का जीवन सफल हो गया है। यही बेटे को काम करना है कि वो पिता के कहे अनुसार, आज्ञा के अनुसार काम करे। परम शुश्रूषणम मह्यम, मेरी तो सबसे बड़ी ये सेवा होगी कि तुम प्रजा का विस्तार करो। कहने, महाराज विस्तार कैसे करें, पृथ्वी तो चली गई जल के अंदर, अब वो जल के अंदर गई हुई पृथ्वी को आप लाओ तो फिर सृष्टि का विस्तार करें, फिर हम रहें और फिर सृष्टि बढ़ेगी। कहा ये बात तो है, अब ध्यान देना हो। ब्रह्मा जी बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि सृष्टि कैसे बनावे, तो ऐसा विचार कर रहे थे इतने में ही, अब श्वास तो नाक से लिए जाते, श्वास ले रहे थे, श्वास लेते लेते उनके नाक से एक छोटा सा वराह उत्पन्न हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की, उनके श्वासों से वराह पैदा हुए, और वे वराह ऐसे हुए कि देखते 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 एक ही क्षण में हाथी जितने बड़े हो गए, फिर थोड़ी देर में देखते देखते बहुत बड़े पर्वत के रूप में आ गए, बहुत बड़ा विशाल वो भगवान का वराह रूप बना। उस वराह रूप को देखा तो सब मरीचि आदि ऋषि आश्चर्य में डूब गए कि ओ क्षणात गंड शिला समय, क्षण भर में जो इतना बड़ा पर्वत बन गया, कौन है, अपिस्वित भगवान ऐसे और कोई नहीं हो सकता, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर ही हो सकते हैं। ऐसा विचार करके सब उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तब वो वराह अपने सब बालों को और कानों को और इनको फफेड़ करके जोर से उन्होंने आवाज की, गर्जना की, और गर्जना करके और देखते ही देखते पहले तो वो आकाश में गए, आकाश में जाकर के और फिर अपने आगे के पैरों को आगे करके और पीछे के पैरों को यूं पीछे करके और पूंछ को ऊपर उठा करके देखते ही देखते जोर से उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई। बोलिए आनंद कंद भगवान, जो ही छलांग लगाई इतने जोर से वो छींटे उछले समुद्र के कि जनलोक में, तपलोक में, सत्यलोक में रहने वाले ऋषि मुनि संत महात्मा अकस्मात अपने यहाँ छींटा गिरावा देखे, क्या हो किसके छींटे हैं, ओ भगवान ने अवतार लिया उनका छींटा पड़ा है, देखो पाठ में, पूजा में और में ये तो जल का प्रोक्षण किया जाता है, जल विसर्जित किया जाता है, वो पवित्र जल अपने लगता है, कितनी पवित्रता का अनुभव होता है। तो उन्होंने बड़ी पवित्रता का अनुभव किया। जनस्तप सत्य निवास नास्ते त्रिभी पवित्र मुनयो गृणस्म, उनके मन में बड़ी पवित्रता का संचार हुआ और भगवान देखते ही देखते जल के अंदर चले गए। भगवान की आंखें फटी हुई, कान एकदम यूं खुले हुए और पंजे हैं वो दो बिना किसी बाधा के पानी जल के अंदर जा रहे हैं, चारों तरफ भगवान यूं अपनी गर्दन घुमा रहे हैं और देखते चले जा रहे हैं। देखते 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 बहुत समुद्र की गहराई के अंदर गए तो वहां पर उन्होंने उस पृथ्वी को देखा तो उनके दांत थे, उन दांतों से पृथ्वी को ही ऊंचा उठा करके और स्वयं उसके नीचे जाकर दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख लिए और रख करके भगवान उस पृथ्वी को लेकर जल के बाहर आने लगे। भगवान जब बाहर आने लगे तो रास्ते में एक दैत्य मिला, उन्होंने उसी समय में उस दैत्य को वहीं पर परास्त कर दिया और लाकर के पृथ्वी को लाकर के जल के ऊपर लाकर स्थापित कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो ही रख दिया, ऋषि मुनि सब बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान पर फूलों की वर्षा होने लगी, देवता लोग धुंधविया बजाने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए, आज पृथ्वी का उद्धार हो गया। अब ऋषि मुनि सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे अजित, हे यज्ञ भावन, आपको संसार में कोई नहीं जीत सकता है, भक्त लोग ही आपको जीत सकते हैं। देखो कैसा आपका ये सूकर रूप है, ध्यान देना, ये पहले सूकर की कथा आई है पृथ्वी के उद्धार के समय में, क्योंकि पृथ्वी का और सूअर का जैसा संबंध है ऐसा और जितने जीव जंतुओं को देख लो नहीं है। उसकी आंख भी नीचे रहती है सूअर की, कान है वो भी यूं रहते हैं, थूथनी है वो भी पृथ्वी की ओर रहती है, और पृथ्वी की गंदी से गंदी चीज को भी स्वीकार कर लेता है सूअर, और खड्डा खोद करके वो अंदर जाकर के उसमें बैठता है। तो पृथ्वी का सूअर के साथ बड़ा गहरा संबंध है। ऋषि मुनि कहते हैं, महाराज ये आपकी थूथनी है ये यज्ञ का पात्र है, कान है वो आपके यज्ञ का पात्र है, और आपके जो रोमावलियां हैं वो कुशा के समान है, आपका जो भी ये रूप है ये सब का सब एक हमारे लिए यज्ञ की सामग्री है, हम आपको नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार से हाथी है वो अपने सूंड के ऊपर कोई फूल रख लेता है, उसको कोई किसी प्रकार से कष्ट का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार से इस विशाल पृथ्वी को आपने अपने दांतों के ऊपर धारण किया है, किसी प्रकार से आपको कष्ट का अनुभव नहीं होता, ये महाराज आप ही के लायक काम है। कैश्रद्धीत है, और कौन दूसरा ऐसा सामर्थ्यवान है जल में गई हुई पृथ्वी का यूं उद्धार कर ले। विधन्वता वेदमयम निजम बपुर जनस्तप सत्य निवासी नो वयम। हम लोग जनलोक तपलोक सत्यलोक में रहने वाले लोग, जो ही आपने अपने जटा को यूं फफेड़ा था और आपके जटा का जटा में से जल का जो कण हमारे शरीर में लगा था, महाराज दृशम पाविता, उससे हम अत्यंत पवित्र हो गए हैं, और ऐसे पवित्र हुए कि अब कोई अपवित्रता हमारे पास आ नहीं सकती है। बड़ी कृपा की महाराज, इस पृथ्वी को जल के ऊपर लाकर आपने स्थापित कर दिया, अब मनुष्यों के द्वारा आपका भजन किया जाएगा। देखो कितनी आशा थी हम लोगों से, अब ऋषि मुनियों ने आशा की, देवताओं ने आशा की, भगवान ने आशा की। यदियोग माया गुणयोग मोहितम विश्वम समस्तम भगवान विदेहिशम। अब आप अपने कृपा से सारे पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होने वाले जीवों में शांति का संचार कीजिए, और महाराज भूले भटके जीवों को आप अपना प्रेम प्रदान कीजिए। इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की, देखते देखते ही भगवान अंतरित हो गए, सब लोगों के मन में बड़ी शांति का संचार होने लगा ऋषि मुनियों के। इस प्रकार की भगवान की पावन कथा है। और विदुर जी, जिस आदमी को भगवान की कथा सुनने को मिल जाती है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो उस कथा को छोड़ करके इधर उधर अपना मन लगाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कथा सुनते ही रहना चाहिए, कि महाराज आप इस कथा को कह भी रहे हो कि सुनना चाहिए, और कथा को आप छोटा करके बोल रहे हो। आप बताओ कि वो जो भगवान वराह का रूप धारण किए हुए थे और एक दैत्य मिला था, ये दैत्य कौन था? हमने सुना कि वो हिरणाक्ष नाम का दैत्य था, जरा उसका यूं सामान्य कथा मत कहो, उसकी विस्तार के साथ कथा कहो। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे साधु, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, भगवान की जो कथा आपने पूछी है इसको मैं सुनाता हूं, इससे मृत्यु का भय दूर होता है, वो कथा तुमको सुनाता हूं। मैंने जो कुछ सुना है देवादि देवाओं से, ब्रह्मा जी से, इन सब से, वो हम तुमको सुनाते हैं। ब्रह्मा जी की देवताओं की एक बार बातचीत हुई थी, उस बातचीत के प्रसंग में ये कथा आई है, वो कथा मैं तुमको सुनाता हूं। देखो मरीचि के एक बेटा थे कश्यप जी, कश्यप जी का विवाह दक्ष की पुत्रियों के साथ हुआ था, उनमें दिति है ये भी उनकी एक पत्नी थी। एक बार की बात है कि सायंकाल के समय में वे तो अपने पूजा पाठ के लिए बैठे हुए थे, संध्या के लिए बैठे हुए थे, इतने में ही दिति ने आकर प्रार्थना की कि महाराज हमारे लड़का नहीं है, लड़का होना चाहिए, हमारे गृहस्थ आश्रम में लड़का नहीं होगा तो बताओ महाराज हम कैसे सुखी रहेंगे, तो आप कृपा करो और हमारे संतान हो ऐसा आप विचार करो। तो कश्यप जी ने कहा कि देखो दिति, ये गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ आश्रम है, इसमें संदेह की बात नहीं है। सभी आश्रमों में हम गृहस्थ को श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं कि और आश्रमों में जो व्यवधान आता है, जो बाधा आती है, वो बाधा गृहस्थ आश्रम में नहीं आती है। ये संसार क्या है, ये बड़ी भारी बाधाओं से भरा हुआ है और गृहस्थ आश्रम एक ऐसे नौका के समान है जिसमें बैठ करके मनुष्य आराम से भोगों से पार हो सकता है। भोगों को संयत करने पर, अपने मन को स्वच्छ कर लेने के बाद मनुष्य आसानी से संसार को उतर जाता है। तो याम आश्रित्या इंद्रिया रातिन दुर्जयान इतराश्रमयी, और आश्रमों में इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना कठिन है, परंतु गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक और संयम पूर्वक इंद्रियों को भोग देने के बाद इंद्रियों का भोगों से ऊपर उठना स्वाभाविक सरल तो हो जाता है। इसलिए जैसे कोई किले में बैठा हुआ शत्रु पर आक्रमण करने में सुगमता का अनुभव करता है, ऐसे गृहस्थ आश्रम तो भाई किले के समान है। यहाँ भोगों से आदमी आराम से ऊपर उठ सकता है। इसलिए संतान की इच्छा होना तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन हर चीज हर समय ठीक नहीं होती है। ये संध्या का समय है, भगवान को याद करने का समय है। इस समय में तुम्हें अपने संतान के विषय में सोचना नहीं चाहिए, जगत के विषय में इस समय में नहीं सोचना चाहिए। संध्या के समय में तो भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये भगवान भूत भावन की वेला है, शंकर की वेला है। शंकर के गण चारों तरफ इस समय में सजग होकर पहरा लगा लगा करके देख रहे हैं कि कौन भगवान को याद करता है, नहीं करता है, कौन संध्या करता है। जिनको गायत्री मंत्र का है, एक बात बता दे, कथा भाग है वो अब थोड़ा कम भी कहे तो भी कोई बात नहीं है। इसका भागवत का उपदेश भाग, स्तुति भाग, ध्यान भाग और दूसरा जो उपदेश भाग है इसके ऊपर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। तो कपिल भगवान का उपदेश भागवत में बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए इसको बड़े प्रेम के साथ सुनना चाहिए। श्री रखते हैं, सर्पों को गले में रखते हैं, ये ऐसे दुष्ट पुरुष हैं, वो हंसते रह रहे, लेकिन ब्रह्मा भी शंकर के सामने झुकते हैं, दूसरे भी शंकर के सामने झुकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अतः तुम भगवान का विचार करो, संध्या के समय में संसार के विषय में, भोगों के विषय में, पुत्रादि के विषय में कोई चिंता मत करो। लेकिन दिति का आग्रह बहुत बड़ा था, दिति मानी नहीं, अपना आग्रह रखी नहीं, हमारे संतान होनी चाहिए। अरे भाई हमारी बात तो मानो, लेकिन वो नहीं बात माने। संग फिर बाद में कश्यप जी ने भगवान अनंत कोटि भगवान को हाथ जोड़ दिया और हाथ जोड़ने के बाद विचार किया कि भाई अब दिति यो नहीं मानने वाली है, तो भाई जो कहने से नहीं मानते उन वे अपने सामने कोई कष्ट आएगा तब मानेंगे। इस प्रकार से भगवान का विधान समझ करके कश्यप जी महाराज वहां फिर ज्यादा दिति को समझाना उचित नहीं समझे और फिर दिति से कहा, देखो दिति, तुमने इस समय में अपने पुत्र की इच्छा की है, तो जाओ तुम्हारे ऐसे पुत्र होंगे कि जिनसे सारे संसार को महान कष्ट का अनुभव होगा। कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे दो ऐसे दैत्य पैदा होंगे, मुहुर आक्रंद इष्यते, सारे संसार के प्राणी उनसे भयभीत होंगे और उनके भय से छुटकारा के लिए स्वयं भगवान अवतार लेंगे, अवतार लेकर के वे उनका नाश करेंगे। दिति ने कहा कि हे मेरे पतिदेव, कोई बात नहीं है, मेरे बेटे उद्दंड है ये तो मेरे लिए दुख की बात होगी, उद्दंड मेरे बेटा होंगे इस बात का तो हमें दुख है, लेकिन वे किसी ब्राह्मण के श्राप से नहीं मरेंगे ना, बस कोई बात नहीं है, ब्राह्मण के श्राप से नहीं मरने चाहिए, चाहे स्वयं भगवान अवतार लेके उनको मारे मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन ब्राह्मण का अपराध करके नहीं मरने चाहिए। कश्यप जी ने कहा, देखो तुमको पश्चाताप हो गया तो जाओ, तुम्हारे बेटा तो ऐसा ही होंगे लेकिन तुम्हारे एक ऐसा पवित्र पुत्र पैदा होगा कि बड़े बड़े भक्त लोग भी उसका आदर करेंगे, संतों में आदर होगा, महापुरुषों में आदर होगा, ऐसा विचित्र वो भक्त होगा कि जिसके नाम लेने से सबके मन में हर्ष पैदा होगा, भक्ति बढ़ेगी, अलम पटाशील धरो गुणा करे, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होगा, इस प्रकार से जिसका कोई शत्रु नहीं ऐसा आपका पौत्र पैदा होगा। तो कहा बहुत अच्छी बात है। अब दिति के मन में ये रहा कि मैं अपने गर्भ को बाहर निकालू ही नहीं, मैं अपने अंदर ही गर्भ को धारण किए रखूं ताकि मेरे बेटा पैदा ही नहीं होंगे तो संसार में विप्लव ही नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे करते 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 भाई 100 वर्षों तक उसने अपने गर्भ में बेटों को धारण किए रखा। अब 100 वर्ष तक वो दीदी के गर्भ में अपनी माता के पेट में रहने वाले बालक, अब उनका तेज इतना विचित्र था कि सारे संसार में हाय त्राही मच गई। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन किया कि महाराज आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आगे पीछे क्या होने वाला है सब जानते हो आप, गृहित गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये, आपके कारण कौन है उसको हम नहीं जानते हैं, आप सबको जानने वाले हैं। इस समय में दिति के गर्भ में जो बालक है उन बालकों से कितना बड़ा भारी संसार में अनर्थ होगा ये बात भी आप जानते हैं, परंतु यदि वो पैदा नहीं होंगे उनका तेज गर्भ में पड़ा पड़ा भी हम सबको दुखी कर रहा है, तो महाराज अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम इस प्राप्त कष्ट से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई देवताओं, हमने जो कुछ सुना है जाना है वो हम आपको बताते हैं। ये दिति के बेटा है जो पैदा होने वाले, कोई सामान्य बेटा नहीं है, ये सनकादियों के साप से पैदा होने वाले स्वयं भगवान के पार्षद जय और विजय है, ये सामान्य पुरुष नहीं है, इसलिए इनके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कि महाराज ये क्या बात है कि एक बार की बात है सनकादि ऋषि बैकुंठ में गए, अब क्या बतावे, बैकुंठ इतना सुंदर है भाई कि वहां सैकड़ों सैकड़ों विमान रहते हैं और वहां पर पशुओं का पक्षियों का बड़ा विचित्र जमघट रहता है, ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी वहां पर कलरव करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर वापियों के पास माने तड़ागों के पास बावड़ियों के पास में हरे हरे वृक्षों के अंदर वे रहते हैं, सुगंधित वहां पर लताएं हैं, लक्ष्मी जी वहां पर हरदम अपने हाथ में कमल को उछालती हुई विचरण करती रहती है, और जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना है वे तो भाई उस बैकुंठ को नहीं प्राप्त कर सकते, और जिन्होंने मानव शरीर प्राप्त किया ज्ञान विज्ञान से संपन्न और भगवान की भक्ति की योग्यता रखने वाला ये मानव शरीर प्राप्त किया और फिर भी वे बैकुंठ के अधिकारी नहीं बने, तो हे देवताओं ऐसे भाग्यहीन जीवों के विषय में हम क्या कह सकते हैं, जिन्होंने एक बार भी भगवान की कथा को बड़े प्रेम के साथ सुन लिया है। हे देवताओं दूरे यमा, वे सब यमराज जी से दूर रह करके उसी बैकुंठ में जाकर विराजमान रहते हैं, तो ये बैकुंठ तो उन भक्तों के लिए है, उन भगवान का धाम है जहाँ हरदम भगवान के पार्षद भगवान के भक्त भगवान के पास ही रहा करते हैं। तो वे सनकादि ऋषि बैकुंठ में चले गए, वहां गए तो वो 6 मार्ग पार कर चुके थे। अब देखो ध्यान देना, उन्होंने 6 डोडियां पार कर ली, 6 मार्ग उन्होंने जीत लिए माने पार कर लिए, और उसके बाद जब आगे गए जय और विजय ने उनको रोक दिया। अब प्रश्न होता है कि 6 यहां पर स्थान को पार कर गए, इसका अर्थ क्या है, माने बैकुंठ के ही प्राप्ति में 6 बाधाएं हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 1 मन, मन संस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, संसार में इंद्रियां और 1 मन, इनके 500 इंद्रियां और 1 मन 6 के साथ जो गुला मिला रहता है वो बैकुंठ को प्राप्त नहीं कर सकता, वे इन इंद्रियों से ऊपर उठे हुए, अथवा काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य 6 दोष हैं, इनको जो जीत लिया है, फिर भी जय और विजय ने जब उनको अंदर जाने के लिए रोका तब उन्होंने देखा कि अरे बैकुंठ की मर्यादा खत्म कर रहे हैं जय और विजय। तो लोग कहते हैं सनकादिकों ने अपना अपमान समझ करके और शाप दे दिया, नहीं नहीं अपमान समझ के शाप नहीं दिया है, उन लोगों ने बैकुंठ की मर्यादा को बिगाड़ा इसलिए शाप दिया है। 6 डोडी पार करके जो 7वीं के अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने अपने सामने छड़ी रख दी, कहा कि महाराज आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, क्यों भाई हम 6 पार करके आए तो करके आए होंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। निषिद्ध माना, जब उनका बार बार निषेध किया तब ये सनकादि ऋषि कुपित होकर के उनको शाप देने लगे कि अरे आप लोग इस बैकुंठ की मर्यादा को इस प्रकार से नष्ट करने चले हो, विषम स्वभाव है, बैकुंठ में रहकर आपके मन में इतना विषम स्वभाव, इतना भी आपको पता नहीं कि जो 6 को जीत के आता है वो बैकुंठ का अधिकारी नहीं है क्या, वो तो बैकुंठ का अधिकारी है ही, तो आपने इतना भी विचार नहीं किया, और भगवान के इस धाम में आप लोग बैठे हो, नयंतरम भगवती ये समस्त कुक्ष आत्मान आत्मनि नभो नवसी व धीरा, अरे आकाश का आकाश से भेद नहीं है, ऐसे परमात्मा का और हमारा कोई भेद नहीं है, और आप लोग हमारे में भेद पैदा कर रहे हो, जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में पड़े रहोगे, चले जाओ यहां से, बैकुंठ में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से उनको श्राप दिया। तब विचार किया कि अरे ऐसी गर्जना के साथ श्राप देने का, बैकुंठ में आकर, अरे भगवान के यहां आकर के धड़ल्ले से कोई श्राप दे दे, ये किसी भक्त का ही काम हो सकता है, क्योंकि बैकुंठ के ऊपर भगवान से भी ज्यादा भक्त का अधिकार है, अतः इनका श्राप देना बिल्कुल उचित है। तत्काल उनके चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके कहने लगे, महाराज हमने आपका बड़ा भारी अपराध किया, भगवान के चरणों में गिरना चाहिए था ना, इसीलिए नहीं गिरे कि ये वैकुंठ है, ये भक्तों का है। तो उनके चरणों में गिर करके उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप हमको वैकुंठ से नीचे गिरा रहे हो, हमें कोई चिंता नहीं, आपने हमको राक्षस योनि में भेजने के लिए श्राप दे दिया उसकी भी कोई चिंता नहीं, बस एक बात हम आपसे चाहते हैं, हम जहां भी जाएं और जैसे भी हम रहें, हमारे दिमाग में हरदम भगवान की स्मृति रहनी चाहिए, इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं चाहते। सनकादिकों की बोली बंद हो गई, अब हां कहें कि ना कहें, वो बिचारे चुप हुए। इतने में ही भगवान को मालूम चला, आहा भगवान वहां से अपने सिंहासन को छोड़ के आ रहे हैं, ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप बताए हैं। एवं तदैव भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विबुद्य सदति क्रम मार्य विहृद्य तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी चलो हमारे भक्त आए हमारे दरवाजे पर, अरे दरवाजे पर हमारा कोई भक्त आ जाए, अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, प्राण प्रिय कोई आ जाए, तो उसको लेने के लिए दरवाजे पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? चलो लक्ष्मी जी चलो। लक्ष्मी जी को साथ में ले लिए और अपने भक्तों के मन को आनंदित करने के लिए भगवान अपना वो सिंहासन उसको छोड़ करके वहां से चले। अब वो गरुड़ ध्वज भगवान जिनके जिनके ऊपर चौरों को डुलाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर भगवान के वहां श्वेत वस्त्र है, स्नेहावलोक कलया भगवान बड़े प्रेम से स्नेह से देखते देखते चल रहे हैं। श्यामे पृथव उर्शिशो भितया श्रिया स्वश्चूड़ामणि स्वभगयंत निवात्म धिष्ण्यम। भगवान की बड़ी विचित्र शोभा हो रही है, भगवान के गले के अंदर वनमाला है और दिव्याति दिव्य वे आभूषण है, पीताम्बर उनका फड़क रहा है और कमर के अंदर जो करधनी है उसकी चलने से थोड़ी थोड़ी बड़ी भिनी भिनी आवाज हो रही है, और चरणों के अंदर भी आभूषण है, हाथों में भी आभूषण है, उससे भगवान की बड़ी विचित्र शोभा हो रही है, जैसे कोई बिजली चमकती है और अंधकार को दूर करता है। इस प्रकार से मकराकृति कुंडल और उनके सिर के ऊपर जो मुकुट, उनके अंदर लगी रहने वाली मणियां बहुत तेजी से चमक, बहुत तीव्र प्रकाश पैदा कर रही है। कौस्तुभ मणि के प्रकाश से सारा वैकुंठ प्रकाशित हो रहा है, सबकी आंखें चकमका गई हैं। ऐसे भगवान वहां पर पधारे हैं और भगवान के चरण कमलों का वहां सनकादि ऋषियों ने दर्शन किया है, स्वरूप का दर्शन किया है। और तो और तस्यारविंद रायनस्य पदारविंद किंजल के मिश्र तुलसी मकरंद वायु। जो भगवान सनकादियों के पास में आए उस समय में भगवान के चरणों में रगे रहने वाली तुलसी का वो पावन और दिव्याति दिव्य सुगंध, ऐसा सुगंध था कि जो ही सनकादिकों के नाक में वो सुगंध गया उनका चित्त तो वहीं पर क्षुब्ध हो गया। यही निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में थे, ये कोई सामान्य गंध से आकृष्ट होने वाले नहीं थे सनकादि ऋषि, लेकिन भगवान का जब चरणों का दिव्य गंध, तुलसी का दिव्य गंध उनके दिमाग में घुसा, उनके नाक में घुसा, तो कहते हैं संक्षोभ मक्षर जुषाम अभी चित्त तन्वो, उनके मन में भी संक्षोभ पैदा हो गया। आहो ऐसी सुगंधी आई कि निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में वृत्तियों को लीन करने पर जो समाधि लगती है वो केवल उनकी सुगंधि से समाधि लग गई उनकी। ऐसी समाधि लगी और उनको कोई होश नहीं रहा। बाद में ज्ञान आया कि अरे साक्षात भगवान इतने सुंदर। पुंसाम गति मृगयताम यह योग मार्ग ही। भगवान का ये शरीर कैसा है? मनुष्यों जैसा है। क्यों? पौष्णम बपू, ये भगवान ने पुरुष रूप से क्यों उनको दर्शन दिए कि लोगों को बताने के लिए कि हे मनुष्यों तुम्हारी और हमारी एक गति है, तुम हमें प्राप्त हो सकते हो, हमें प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार से मानव मनुष्यों को अपना अधिकार देते हुए भगवान मनुष्य शरीर से उनके सामने प्रकट हुए हैं। उन सनत कुमार आदि ने सोचा कि ओहो, आज जैसा दर्शन हमने बहुत सी चीजें देखी, ध्यान में भी देखी और यूं भी देखा, लेकिन देखने का फल तो आज हमको मिला है। हमने फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हमारे पिताजी से आपके विषय में बहुत बार हमने सुना था, लेकिन जैसा सुख जैसा दर्शन आज हमको मिला है, ऐसा तो महाराज हमने सोचा भी नहीं था। अंतपिते प्रसादम, महाराज हम लोगों ने तो मोक्ष को बहुत ऊंचा समझ रखा था, लेकिन मोक्ष भी आज आपके इस दिव्य स्वरूप दर्शन के सामने फीका मालूम देता है। महाराज हम बैकुंठ में आए, हमारे द्वारा कोई गलती हो गई हो तो महाराज आप जैसा भी चाहे आप हमें दंड दे दीजिए, जो भी आप हमें प्रायश्चित के लिए कहें वो सब हम करने के लिए तैयार हैं, परंतु महाराज आपका ये दिव्य रूप हमारे सामने आया है, जो हमने इस रूप का दर्शन किया है, ये तो महाराज हमारे मन में एक बहुत ही विलक्षण छाप छोड़े हुए है, तो महाराज हमने बैकुंठ में आकर कोई गलती कर दी हो तो आप क्षमा करना। भगवान कहने लगे, हे सनकादि ऋषियों, मैं ये सुनने के लिए नहीं आया था, मैं तो आपको कुछ सुनाने के लिए आया था। देखो, जय और विजय मेरे पार्षद हैं, ये मेरे नौकर हैं, मेरे भृत्य हैं, इनके द्वारा कोई भी अपराध हो गया हो तो हे सनकादि ऋषि वो मेरे द्वारा किया हुआ मानना, और इनकी ओर से आप लोगों के पास क्षमा याचना करने के लिए मैं आया हूं। ये तो बेचारे क्या क्षमा मांगेंगे, मैं इनकी ओर से क्षमा मांगने आया हूं। यस्यामृता मल यश श्रवणावगाह, और हे सनकादियों, मेरा बड़ा निर्मल यश आज संसार में फैला हुआ है, और नीचे से नीचे प्राणी तक जो मेरा यश फैला हुआ है उसको फैलाने वाले कौन है? आप ब्राह्मण लोग हैं। यदि आप लोग मेरा यश नहीं फैलाते तो इतना संसार में यश थोड़े ही फैलता। ऐसे ब्राह्मणों का प्रतिकार करने वाला मेरा हाथ भी क्यों ना हो, मेरी भुजा भी क्यों ना हो, मैं उसको भी काट करके फेंकने में तैयार हूं, लेकिन ब्राह्मण का अपमान महाराज मैं कभी नहीं सह सकता हूं। न शरीर विरक्तम इमाम विदहाति यस्य, आज लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं है। कारण क्या है? और मेरे चरणों से निकला हुआ गंगा जल सबको पवित्र कर रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल आप ही है। इसलिए ब्राह्मण के मुख में जो घी का ग्रास जाता है उससे मैं संतुष्ट होता हूं, इसलिए मैं ब्राह्मणों को बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूं, और ब्राह्मण मेरा शरीर है। ब्राह्मण यदि क्रोध भी करता है, तिरस्कार भी करता है, और उसको जो बड़े प्रेम से सह लेता है वो मेरा भक्त होता है, और जो ब्राह्मण को कष्ट देता है वो अंत में जाकर महान कष्ट को प्राप्त होता है। तो आपने जो बड़ी भारी कृपा की इनको दंड देने के लिए, जो आपने शाप दिया, बड़ा अच्छा किया। हमारे यहाँ की मर्यादा ऐसी नहीं है कि ब्राह्मणों का अपमान करें, इनके द्वारा आपका अपमान हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और भूयो ममांति के मिताम, एक काम आप जरूर कर दीजिए, ये वापस हमारे पास ही आवे, ऐसी आप कृपा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान की ऐसी विचित्र बात सुनकर के तो बिचारे अब सनकादि ऋषि क्या बोलते। विगाही अगाध गंभीराम न विदुस्तच्च कीर्षिताम, भगवान की वाणी में बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ था। वे ऋषि भगवान के सामने कहने लगे, महाराज सारे धर्म की रक्षा करने वाले आप, सनातन धर्म आपसे निकला हुआ, आप निर्विकार हैं, लक्ष्मी जी जिनको ब्रह्मा आदि सब चाहते हैं सबको छोड़ करके आपके पास रह रही है, और आपने भी लक्ष्मी का इतना आदर नहीं किया है जितना आपने धर्म का आदर किया है, जितना आपने ब्राह्मण का आदर किया है। आप लोग यदि ऐसा आदर नहीं करते तो ये धर्म की मर्यादा कभी नष्ट हो जाती होती। तो महाराज हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वारा गलती हो गई, आप हमें जो भी दंड देना चाहे दंड दे दीजिए, और हम वो दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। भगवान कहने लगे कि नहीं, ये आपने जो दंड दिया है ये दंड वास्तव में ठीक किया है। शापो मयैव निमित्तस् तदवैते विप्रा, संतों के महापुरुषों के द्वारा जो कुछ किसी को कठोर वाक्य सुनने को मिल जाए तो वो मेरे ही इच्छा से उनको सुनने को मिलते हैं, मैं उसमें निमित्त कारण हूं। कि क्या बात हुई महाराज, क्या आपने हमसे श्राप दिलवाया? कि बिल्कुल हमने दिलवाया। कि क्या बात हुई? कि ये मेरी कोई बात थी, बात ऐसी हुई कि एक बार लक्ष्मी जी कहीं बैकुंठ से बाहर गए थे, तो ये लक्ष्मी जी जब अंदर आने लगी तो यही जय और विजय उनको रोकने के लिए खड़े हो गए, अंदर नहीं जा सकते। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे भाई मैं यहाँ की मालकिन, मैं यहाँ रहने वाली, तो हमको अंदर नहीं जाने दोगे? बहुत अन्याय विनय किया तो लक्ष्मी जी को अंदर जाने दिया। अब लक्ष्मी जी आई हमारे पास, रोने लगी, बिलखने लगी कि देखो आज जय और विजय ने ऐसा किया, हमने देखा कि देखो तुम्हारे कारण से यदि हम इनको कुछ कहेंगे तो दुनिया हमको यही कहेगी कि देखो लक्ष्मी जी के सिखाए सिखाए इन्होंने जय और विजय को दंड दे दिया। ऐसा भी समय आएगा कि ये अपने आप ही किसी दूसरे के निमित्त अपने आप ही यहां से चले जाएंगे, तुमको और हमको बिल्कुल चुपचाप रहना चाहिए। अब वो ही सनकादि ऋषि यहां आए और हमारे संकल्प से उन्होंने इनको श्राप दिया है, सनकादि आप चिंता मत करो, मेरे मन की बात आपने पूरी की है, आपके मन में कोई नाराजगी नहीं आनी चाहिए। अब वो सब प्रणाम करके वहां से रवाना हो गए। तो हे देवताओं, ये भगवान सब प्रकार से विश्व की स्थिति और पालन और संहार करने में महाकारण है, इनकी माया किसी के द्वारा जानी नहीं जा सकती, वे सब जीवों का कल्याण करेंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। अब सब देवता लोग ब्रह्मा जी की बात सुनकर के रवाना हो गए। अब 100 वर्ष हो गए, दीति ने देखा कि भाई अब तो हमारे बेटा तो होने ही चाहिए, तो जो ही वो बेटा पैदा हुए, पैदा होते ही देखते देखते वो भी पर्वताकार हो गए, दोनों के दोनों पर्वताकार हो गए। इतना सृष्टि में विप्लव हुआ, आकाश से तो बरसात की जगह तो खून टपकने लग गया, गायों को बिचारों को घास फूस अच्छा न लगे, और तरह तरह से प्रतिकूल पशु पक्षी बोलने लगे, जाने लगे, सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। और वे उसी समय में देखते देखते बड़े हो गए और हाथ में गदा लेकर के और सृष्टि के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए चले। तो हिरणाक्ष था, अपने हाथ में गदा लेकर के सबसे पहले स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो वहां पर स्वर्ग वाले देवता बिचारे घबरा गए, तो देवता इधर उधर छिप गए, तो स्वर्ग के ऊपर अधिकार कर लिए। फिर बाद में गए वो समुद्र के वहां वरुण जी के पास में, वरुण जी से कहा कि देखो वरुण, या तो हमसे लड़ाई करो और या हमारी आधीनता स्वीकार करो। वरुण जी ने कहा, भाई हम तो बहुत बुढ़े आदमी हैं, लड़ झड़ सकते नहीं है, तुमको लड़ाई करने का एक हम बहुत अच्छा उपाय बता दें कि क्या, एक पुराण पुरुषोत्तम श्री हरि हैं, आप उन्हीं से जाकर के लड़ाई करो, आपके लड़ाई की बात वो ही पूरी कर सकते हैं। तो हिरणाक्ष ने कहा अच्छी बात है। तब वो हिरणाक्ष ने पूछा कि भाई वो मिलेंगे कहाँ, कि मिलेंगे कहाँ ये तो आप इंक्वायरी ऑफिस में जाकर मालूम करो। तो वो इंक्वायरी ऑफिस क्या है, तो भाई आप जाओ नारद जी से पूछ लो। तो वो वरुण जी के वहां से रवाना हुए, उधर नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज मिल गए। हिरणाक्ष ने कहा, नारद जी महाराज, ये हरि कौन है, ये विष्णु कौन है, हमने सुना कि बड़ा बलवान है, बड़ा श्रेष्ठ है, और वो हमने ये सुना कि वो राक्षसों को मारने में बड़ा प्रवीण है, अरे हमारे जैसे पैदा नहीं हुए उससे पहले पहले मार दिए होंगे, बताओ वो कौन है, हम उनसे दो दो हाथ करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, शाबाश शाबाश शाबाश, वीर बहादुर होता है वो ऐसा ही होता है, जाओ तुम जल के अंदर एक वराह की आकृति में तुमको मिलेगा और वो पृथ्वी को ऊपर ला रहा है, जल्दी जाओ तुम उसके पास में, अभी तो वो काम में भी लगा हुआ है, अरे सीधे सीधे लड़ाई करोगे तो क्या पता वो तुम पर विजय प्राप्त कर भी लेवे, अभी काम में लगा हुआ है, तुम जाकर के उससे युद्ध करोगे तो भाई उसकी शक्ति तो अब वो ही जाने, तुम वहां रसातल में चले जाओ। के अच्छी बात है, डुबकी लगाई उसने समुद्र में, नीचे गया जाते जाते देखा कि वस्तुतः नारद जी ने बताया वैसा का वैसा स्वरूप है, दांत है, दांतों के ऊपर पृथ्वी को धारण किया हुआ है, हाथ में गदा है, बड़ा बलवान है। और जो ही हिरणाक्ष उस वराह रूप को देखा है, वराह भगवान ने अपनी तेज से आंखें उनकी ओर निकाली तो हिरणाक्ष भी उनकी तरफ आंखें निकाली, दोनों के दोनों अब जुट गए, भगवान के ऊपर गदा का प्रहार करने लगे। भगवान ने कहा, देख भाई लड़ाई करनी है तो हम आराम से लड़ाई करने के लिए तैयार है, पहले हमारे ऊपर पृथ्वी है उसको रखिया में, उसके बाद लड़ाई करेंगे। कहना ही नहीं, जो बाद की बात करता है वो काय का योद्धा है, तुमको तो अभी लड़ाई करनी पड़ेगी। भगवान के ऊपर 2-4 गदा का प्रहार किया, भगवान ने तत्काल पहले जाकर के गदा खाकर के भी पृथ्वी को लाकर ऊपर रख दिया और फिर वो नीचे डुबकी लगा करके कहा, अब आ जाओ तुम्हारे में कितनी ताकत है देखें। ताल ठोक के भगवान भी खड़े हो गए, हिरणाक्ष तो वहां था ही, अब दोनों के दोनों खूब आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, लड़ने लगे तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सब कुछ देख रहे थे, वे घबराए, घबराते घबराते कहा, महाराज देखो संध्या न हो जाए इससे पहले पहले ही आप अभिजित मुहूर्त में ही इसको पूरा कर दो, नहीं तो संध्या के समय में इनके पास बल ज्यादा आता है। तो कहा अच्छी बात है। अब अपने हाथ में शस्त्र ले लिए, भगवान ने याद किया सुदर्शन चक्र को, उसने अपने हाथ में त्रिशूल ले लिया, त्रिशूल को भगवान की तरफ डाला तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से त्रिशूल नष्ट कर दिया। फिर अपने हाथ में एक परिग लिया, घोटा लिया, घोटा लेकर के उस पर आक्रमण किया, उसको भी नष्ट कर दिया। फिर तरह तरह की उसने माया फैलाई, भगवान के सामने माया चलती कितनी, सुदर्शन चक्र से माया भी नष्ट हो गई। अब उसके पास कुछ भी शस्त्र नहीं बचे। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को और गदा को तो एक तरफ रखा और उछल करके भगवान गए और जाके उसका यूं गड़ा पकड़ा और जोर से उसके मुंह के ऊपर ऐसा मुक्का मारा कि हिरणाक्ष वहीं पर पूरा हो गया। बोलिए आनंद कंद। अब भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं ने दुंदुभियां बजाने चालू कर दी कि महाराज बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मल सत्व मूर्तये, हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है, ये आपका दिव्यादि दिव्य रूप कार्य है, ये कार्य महाराज जगत के कल्याण के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ हुआ है। इस प्रकार से भगवान फिर अपने धाम में चले गए। तो हे सोनकादि ऋषियों, बड़ा पवित्र ये हिरणाक्ष वध का आख्यान है। इस आख्यान को जो सुनता है वो कितना ही बड़ा भारी पापी क्यों न हो, सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या है, वो ब्रह्म हत्या से भी छूट जाता है। इतना महान ये पवित्र यश है, इस यश को सुनते हैं गाते हैं तो वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। सौनकादि कहते हैं कि महाराज अब मनवंतर, अब ये स्वयंभू मनु है, उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर कैसे सृष्टि का विस्तार किया और फिर विदुर जी ने और क्या क्या प्रश्न किए, मैत्रेय जी ने उनको क्या उत्तर दिया, ये आप हमको समझाइए। विदुर जी ने कहा कि महाराज ये प्रजापति ने जब ये इतनी बड़ी प्रजा बनाई और मरीचि आदि पैदा हुए तो सब प्रजापति थे, तो किस प्रकार से इन्होंने सृष्टि पैदा की, सैद्वितीया किमसृजन स्वतंत्रा उत कर्मसु, क्या इन्होंने स्त्रियों के साथ में सृष्टि को बनाया अथवा ये स्त्रियों से निरपेक्ष होकर के सृष्टि को बनाए। मैत्रेय जी कहते हैं देखो सृष्टि के बनने में मूल कारण भगवान का संकल्प होता है और जीव का अदृष्ट होता है, जीव का प्रारब्ध होता है। अब देखो यहां भी सृष्टि की बात बताएंगे, यहां बहुत सार की बात बता रहे हैं कि जीव का अदृष्ट और पुरुष का माने परमात्मा का संकल्प, ये दो प्रधान कारण है। और फिर काल शक्ति को लेकर प्रकृति में क्षोभ होकर के तरह तरह से वे चीजें मनती हैं, महतत्व अहंकार पंचतन मात्राएं इंद्रियां वगैरह, इन सब का एक स्वर्णमय अंडा होता है, जल के अंदर वो रहता है, भगवान उस अंडे को फिर बाहर प्रकट करते हैं, तरह तरह से जीव उसमें से निकलते हैं, ये यक्ष है राक्षस है ये सब उसी में से पैदा होते हैं, संध्या भी उसी में से पैदा हुई, भूत प्रेत पिशाच सब उसमें से पैदा हुए और मनु भी उसी में से ही पैदा हुए। और जब मनु पैदा हुए तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि मनु की संतान जो मानव है इन्हीं के द्वारा सृष्टि का भला होने वाला है। इस बात से सारे के सारे त्रिलोकी में सारी सृष्टि में महान आनंद छा गया कि अब ये मनुष्य आ गए और मनुष्य के द्वारा कल्याण होगा, इस बात की खुशी का कोई पारावार नहीं रहा और फिर मनुष्यों के ऊपर ही सबके सब अवलंबित रहे, क्योंकि मनुष्य है वही तपस्या कर सकते हैं, वही विद्या प्राप्त कर सकते हैं, वही योग प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण से मनुष्यों से प्रसन्न होकर के सारी सृष्टि निश्चिंत हो गई थी, इस प्रकार से सृष्टि बनी है। अब विदुर जी महाराज कहते हैं कि मनु का वंश सुनाओ महाराज, प्रियव्रत और उत्तान पाद का क्या वंश चला ये बताओ, देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ, उसे कपिल भगवान का अवतार हुआ था, तो महाराज ये कपिल भगवान का उपाख्यान है, ये हमको विस्तार के साथ सुनाओ।
भगवत प्रीत्यर्थ कही जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा के पाक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय स्कंद के कपिल उपाख्यान से आज की कथा प्रारंभ की जा रही है। भगवान की अतिशय कृपा होती है तब इस प्रपंच में धसे हुए जीवन में से कुछ क्षण संत महापुरुषों की छत्र छाया में हम लोगों को श्रीमद्भागवत महापुराण के साथ संबंध करने का सुअवसर प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत भाव की दृष्टि से जितना गंभीर है उतना ही हम लोगों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। श्रीमद् भागवत में केवल कथाएं हो अथवा केवल कथा कहने का ही उद्देश्य हो इतनी ही बात नहीं है। उस कथा के माध्यम से हमारा अंतःकरण निर्मल हो, पवित्र ज्ञान हमारे हृदय में पैदा हो और संसार की ओर प्रवाहित होने वाली हमारी प्रेम शक्ति है वह वहां से हटकर भगवान की ओर लगे, यह श्रीमद् भागवत का परम और चरम उद्देश्य है। तीसरे स्कंद में जहां सृष्टि का प्रकरण चल रहा है वहां आपने अभी तक केवल वराह अवतार की कथा सुनी है, तो उस वराह अवतार के इस क्रम में भगवान का बड़ा विलक्षण प्रभाव आपने सुना। जिस ढंग से हिरणाक्ष और हिरणकश्यप अपने माता से पैदा होकर देखते देखते ही विशाल काय हो गए, विशाल शरीर वाले हो गए, ऐसे ही भगवान ने भी वराह अवतार लिया इन दुष्टों का संहार करने के लिए, हिरणाक्ष का संहार करने के लिए। तो वे भी ब्रह्मा जी के नाक से पैदा होकर देखते देखते पर्वताकार हो गए। जैसा योद्धा होगा, जिस बल वाला होगा, जिस पराक्रम वाला होगा, भगवान उससे भी बढ़कर उसके सामने आ डटते हैं और उनका संहार करते हैं। अब दूसरी कथा कपिल भगवान की चल रही है। कपिल भगवान की इस कथा में हम लोग बड़ी विचित्र बात सुनेंगे। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के कपिल का स्वरूप मिलता है, एक कपिल निरीश्वरवादी है और दूसरे कपिल शेश्वरवादी है, माने सांख्य शास्त्र के प्रणेता एक ऐसे कपिल हुए हैं जिन्होंने प्रकृति और चेतन को तो माना है लेकिन इन दोनों के नियामक तत्व को, परमेश्वर को नहीं माना है। बहुतों को ये संदेह हो सकता है नाम साम्य के कारण कि संभवतः भागवत के सांख्य को उपस्थित करने वाले कपिल सांख्य दर्शन के कपिल के समान ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। भागवत के कपिल श्वेश्वरवादी क्या स्वयं ईश्वर ही अवतरित हुए हैं, इसलिए निरीश्वरवादिता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। साथ ही साथ भागवत के कपिल हैं ये भगवान के ध्यान की महिमा बताते हैं, भगवान का स्वरूप बताते हैं, प्रकृति और पुरुष इन दोनों के भी नियामक हैं, इन दोनों के नियंत्रक हैं, इस रूप में भी इनका वर्णन मिलता है। अतः भागवत के कपिल बड़े महान हैं, वे साक्षात परमेश्वर के अवतार हैं, परमेश्वर के स्वरूप हैं। विदुर जी महाराज सृष्टि के प्रसंग में प्रश्न कर रहे थे कि मनु और शत्रुपा से जिस सृष्टि का विस्तार हुआ है वो आप हमको विस्तार से सुनाओ, क्योंकि मनु चरित्र है ये हम लोगों के हृदय को निर्मल करने का बहुत ही सुंदर उपाय है। आज हम लोग जो मानव कहलाते हैं वो मानव भी मनु की संतान होने के कारण से है, तो मनुष्यों का सबसे आदि पुरुष मनु हुआ, अतएव मनु चरित्र सुनाइए। तो वे मनु चरित्र सुना रहे थे, इतने में ही जाने क्या सूझी, विदुर जी ने एक प्रश्न बीच में और कर दिया। तो दो प्रकार की सृष्टि का निरूपण यहां तीसरे स्कंद में है, एक मानसी सृष्टि है, एक बैजी सृष्टि है। तो हम लोग बैजी सृष्टि के अंतर्गत हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो प्रारंभ में सृष्टि बनाई थी वो मानसी सृष्टि बनाई थी। प्रजापति वो होते हैं जो अपने मन के संकल्प को मूर्त रूप देने में समर्थ होते हैं। उन्होंने संकल्प किया कि वृक्ष होने चाहिए तो तत्काल वृक्ष हो गए, संकल्प किया कि यहाँ नदी होनी चाहिए तो वहाँ नदी हो गई, संकल्प किया कि यहाँ पशु पक्षी पैदा होने चाहिए तो पशु पक्षी पैदा हो गए, संकल्प किया कि यहाँ अमुक प्रकार का स्थान नगर होना चाहिए तो स्थान नगर हो गए। तो ये सब मानसी सृष्टि है, उनके संकल्प के साथ पैदा हुई है। परंतु ब्रह्मा जी को इससे भी संतोष नहीं हुआ, तो फिर ये मानवी सृष्टि हुई है, मनु शत्रुपा से सृष्टि बनी है। मनु के दो लड़का हुए और तीन लड़कियां हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दो तो उनके लड़का, आकुति देवहूति और प्रसूति तीन उनकी कन्याएं थी। आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ और देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के बेटा कर्दम के साथ हुआ। कर्दम है ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए हैं। अब कर्दम के साथ देवहूति का विवाह हुआ जहां भगवान कपिल ने अवतार लिया था, अतः इस कथा में विदुर जी की विशेष श्रद्धा हुई और विदुर जी महाराज ने विशेष रूप से समझाया कि महाराज पूछा कि ये देवहूति के यहाँ कपिल भगवान ने जो अवतार लिया है, इनके प्रादुर्भाव की और इनके ज्ञान की हमें विशद व्याख्या बताते हुए समझाइए। तो मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि देखो, प्रजापति कर्दम को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम्हें प्रजा का विस्तार करना चाहिए। तब कर्दम ऋषि के मन में आया कि पिताजी ने तो कह दिया, परंतु परम पिता परमेश्वर से भी हम लोग कुछ पूछें, उनसे भी हम कुछ जानें। तो उन्होंने हजारों वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ की। जब उनकी तपस्या से चित्त की वृत्तियां अत्यंत निर्मल हो गई, तब भगवान उनके सामने प्रकट हुए। ध्यान देवें, कर्दम के सामने जो भगवान का स्वरूप बता रहे हैं, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि देखो विदुर, शाब्दम ब्रह्म दधद वपुः, वे भगवान शाब्द ब्रह्म से उपस्थित हुए। ये शाब्द ब्रह्म क्या होता है, माने गुरुजनों से, संतों से, महात्माओं से, उनके शब्दों से सुनकर हम लोग भगवान के विषय में एक धारणा बनाते हैं, भगवान उसी धारणा के अनुसार हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ये भगवान का शाब्द वपु है, शाब्द स्वरूप है।